श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय 59 नरकासुर का वध। राजा परीक्षित ने कहा, अनेक स्त्रियों का अपहरण करने वाला भौमासुर किस तरह भगवान द्वारा मारा गया। कृपा करके भगवान चारडंग धनवा के इस चौर्य का वर्णन कीजिए। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, जब भोम ने इंद्र की माता के कुंडलों के साथ साथ वरुण का चक्र तथा मंदर पर्वत की चोटी पर स्थित देवताओं की क्रीड़ा स्थली को चुरा लिया, तो इंद्र कृष्ण के पास गया और उन्हें इन दुष्कृतियों की सूचना दी। तब भगवान अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर के लिए रवाना हो गए, जो चारों ओर से पर्वतों, बिना पुरुषों के चलाए जाने वाले हथियारों, जल, अग्नि तथा वायु से और मुर पांच तारों फंदों के अवरोधों से घेरा हुआ था। भगवान ने अपनी गदा से चट्टानी किले बंदी को, अपने भाणों से हथियारों की नाकेबंदी को, अपने चक्र से अग्नि, जल तथा वायु की किलेबंदी को और अपनी तलवार से मुरपाश की तारों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तब गदाधर ने अपने शंख की ध्वनि से दुर्ग के जादुई तिलसमों को और उसी के साथ उसके वीर रक्षकों के हृदयों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने अपनी भारी गदा से किले के मिट्टी से बने परकोटे को डहा दिया। जब पांच तीरों वाले असुर मुर ने भगवान कृष्ण के पांच जन्य शंख की ध्वनि सुनी, जो युग के अंत में बिजली वज्र की कड़क की भांति भयावनी थी, तो नगर की खाई की तली में सोया हुआ वह असुर जग गया और पानी से बाहर निकल आया। युगांत के समय की सूर्य की अग्नि सदृश अंधा बना देने वाले भयंकर तेज से चमकता हुआ मुर अपने पांचों मुखों से तीनों लोकों को निगलता सा प्रतीत हो रहा था। उसने अपना त्रिशूल उठाया और साक्षर्य पुत्र गरुड़ पर वैसे ही टूट पड़ा जिस तरह आक्रमण करता हुआ सर्प। मुर ने अपना त्रिशूल घुमाया और अपने पांचों मुखों से दहाड़ते हुए उसे गरुड़ पर बड़ी उग्रता से फेंक दिया। यह ध्वनि पृथ्वी, आकाश, सभी दिशाओं तथा बाह्य अंतरिक्ष की सीमाओं में भरकर ब्रह्मांड की खोल से टकरा कर प्रतिध्वनित होने लगी। तब भगवान हरि ने गरुड़ की ओर उड़ते हुए त्रिशूल पर दो बाणों से प्रहार किया और उसे तीन खंडों में काट डाला। इसके बाद भगवान ने मुर के मुखों पर कई बाण मारे और असुर ने भी क्रुद्ध होकर भगवान पर अपनी गदा फेंकी। जब युद्ध भूमि में मुर की गदा कृष्ण की ओर लपकी, तो गदा ग्रज ने अपनी गदा से उसे बीच में ही रोक दिया और उसे हजारों टुकड़ों में तोड़ डाला। तब मुर ने अपनी बाहें ऊपर उठा ली और अजेय भगवान की ओर दौड़ा, जिन्होंने अपने चक्र से उसके सिरों को सरलता से काट गिराया। प्राणविहीन मुर का सिर कटा शरीर पानी में उसी तरह गिर पड़ा जैसे कोई पर्वत जिसकी चोटी इंद्र के वज्र की शक्ति से छिन्न हो गई हो। अपने पिता की मृत्यु से क्रुद्ध होकर असुर के साथ पुत्र बदला लेने के लिए उद्यत हो गए। भौमासुर का आदेश पाकर ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान तथा अरुण नामक सातों पुत्र अपने हथियार धारण किए पीठ नामक अपने सेनापति के पीछे पीछे युद्ध क्षेत्र में आ गए। इन भयानक योद्धाओं ने क्रुद्ध होकर बाणों, तलवारों, गदाओं, भालों, रिष्टियों तथा त्रिशूलों से अजेय भगवान कृष्ण पर आक्रमण कर दिया, किंतु भगवान ने अपनी अमोघ शक्ति से हथियारों के इस पर्वत को अपने बाणों से छोटे छोटे टुकड़ों में काट डाला। भगवान ने पीठ इत्यादि प्रतिद्वंदियों के सिर, जांगे, बाहें, पांव तथा कवच काट डाले और उन सबों को यमराज के लोक भेज दिया। जब पृथ्वी पुत्र नरकासुर ने अपने सेना नायकों का यह हाल देखा तो उसका क्रोध आपे में न रह सका, अतः वह क्षीर सागर से उत्पन्न हाथियों के साथ जो उन्मत्तता के कारण अपने गंड स्थल से मद चुआ रहे थे अपने दुर्ग से बाहर आया। गरुड़ पर आसीन भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी सूर्य को डकने वाले बिजली से युक्त बादल जैसे प्रतीत हो रहे थे। भगवान को देखकर भौम ने उन पर अपना चतधनी हथियार छोड़ा। तत्पश्चात भौम के सारे सैनिकों ने एक साथ अपने अपने हथियारों से आक्रमण कर दिया। उस क्षण भगवान गदाग्रज ने अपने तीक्ष्ण बाण भौमासुर की सेना पर छोड़े। नाना प्रकार के पंखों से युक्त इन बाणों ने उस सेना को शरीरों के ढेर में बदल दिया जिनकी बाहें, जांगे तथा गर्दनें कटी थी। इसी तरह कृष्ण ने विपक्षी घोड़ों तथा हाथियों को मार डाला। हे कुरुवीर, तब भगवान हरि ने उन सारे अस्त्रों तथा शस्त्रों को मार गिराया जिन्हें शत्रु सैनिकों ने उन पर फेंका था और हर एक को तीन तेज बाणों से नष्ट कर डाला। इस बीच भगवान को उठाकर ले जाते हुए गरुड़ ने अपने पंखों से शत्रु के हाथियों पर प्रहार किया। ये हाथी गरुड़ के पंखों, चोंच तथा पंजों से प्रताड़ित होने से भागकर नगर के भीतर जा घुसे, जिससे कृष्ण का सामना करने के लिए युद्ध भूमि में केवल नरकासुर बचा रहा। जब भौम ने देखा कि गरुड़ द्वारा उसकी सेना खदेड़ी तथा सताई जा रही है तो उसने गरुड़ पर अपने उस भाले से आक्रमण किया जिससे उसने एक बार इंद्र के वज्र को परास्त किया था, किंतु उस शक्तिशाली हथियार से प्रहार किए जाने पर भी गरुड़ तिलमिलाए नहीं। निसंदेह वे फूलों की माला से प्रहार किए जाने वाले हाथी के समान थे। तब अपने सारे प्रयासों में विफल भौम ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया, किंतु इसके पहले कि वह उसे चलाए भगवान ने अपने तेज धार वाले चक्र से हाथी के ऊपर बैठे हुए उस असुर के सिर को काट डाला। भूमि पर गिरे हुए भौमासुर का सिर तेजी से चमक रहा था क्योंकि यह कुंडलों तथा आकर्षक मुकुट से सज्जित था। ज्यों ही हाय हाय तथा बहुत अच्छा हुआ के क्रंदन उठने लगे त्यों ही ऋषियों तथा प्रमुख देवताओं ने फूल मालाओं की वर्षा करते हुए भगवान मुकुंद की पूजा की। तब भूमि देवी भगवान कृष्ण के पास आई और भगवान को अदिति के कुंडल भेंट किए जो चमकीले सोने के बने थे और जिसमें चमकीले रत्न जड़े थे। उसने उन्हें एक वैजयंती माला, वरुण का छत्र तथा मंदर पर्वत की चोटी भी दी। हे राजन, उनको प्रणाम करके तथा उनके समक्ष हाथ जोड़े खड़ी वह देवी भक्ति भाव से पूरित होकर ब्रह्मांड के उन स्वामी की स्तुति करने लगी जिनकी पूजा श्रेष्ठ देवता गण करते हैं। भूमि देवी ने कहा, हे देव देव, हे शंख चक्र तथा गदा के धारण करता, आपको नमस्कार है। हे परमात्मा, आप अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए विविध रूप धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आपको मेरा सादर नमस्कार है। आपके उदर में कमल के फूल जैसा गड्ढा अंकित है। आप सदैव कमल के फूल की मालाओं से सुसज्जित रहते हैं। आपकी चितवन कमल जैसी शीतल है और आपके चरणों में कमल अंकित है। हे वासुदेव, हे विष्णु, हे आदि पुरुष, हे आदि बीज भगवान, आपको सादर नमस्कार है। हे सर्वज्ञ, आपको नमस्कार है। अनंत शक्तियों वाले इस ब्रह्मांड के अजन्मा जनक ब्रह्मा, आपको नमस्कार है। हे वर तथा अवर के आत्मा, हे सृजित तत्वों के आत्मा, हे सर्वव्यापक परमात्मा, आपको नमस्कार है। हे अजन्मा प्रभु, सृजन की इच्छा करके आप वृद्धि करते हैं और तब रजो गुण धारण करते हैं। इसी तरह जब आप ब्रह्मांड का संहार करना चाहते हैं तो तमो गुण, और जब इसका पालन करना चाहते हैं तो सतो गुण धारण करते हैं, तो भी आप इन गुणों से अनाच्छादित रहते हैं। हे जगतपति, आप काल प्रधान तथा पुरुष हैं, फिर भी आप पृथक एवं भिन्न रहते हैं। यह ब्रह्म है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इंद्रिय विषय, देवता, मन, इंद्रियां, मिथ्या अहंकार तथा महत्तत्व आप से स्वतंत्र होकर विद्यमान हैं। वास्तव में वे सब आपके भीतर हैं, क्योंकि हे प्रभु, आप अद्वितीय हैं। यह भूमासुर का पुत्र है, यह भयभीत है और आपके चरण कमलों के समीप आ रहा है, क्योंकि आप उन सबों के कष्टों को हर लेते हैं जो आपकी शरण में आते हैं। कृपया इसकी रक्षा कीजिए। आप इसके सिर पर अपना कर कमल रखें जो समस्त पापों को दूर करने वाला है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह विनीत भक्ति के शब्दों से भूमि देवी द्वारा प्रार्थना किए जाने पर परमेश्वर ने उसके पोते को अभय प्रदान किया और तब भौमासुर के महल में प्रवेश किया जो सभी प्रकार के ऐश्वर्य से पूर्ण था। वहां भगवान कृष्ण ने 16,000 से अधिक राजकुमारियां देखी जिन्हें भौम ने विभिन्न राजाओं से बलपूर्वक छीन लिया था। जब स्त्रियों ने पुरुषों में सर्वोत्तम पुरुष को प्रवेश करते देखा तो वे मोहित हो गई। उन्होंने मन ही मन उन्हें, जो कि वहां भाग्यवश लाए गए थे, अपने अभिष्ट पति के रूप में स्वीकार कर लिया। हर राजकुमारी ने इस विचार से कि विधाता इस पुरुष को मेरा पति बनने का वर दे, अपने हृदय को कृष्ण के विचार में लीन कर दिया। भगवान ने राजकुमारियों को स्वच्छ निर्मल वस्त्रों से सजवाया और फिर उन्हें रथ, घोड़े तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं के विशाल कोषों समेत पालकियों में द्वारका भिजवा दिया। भगवान कृष्ण ने ऐरावत प्रजाति के कुल के 64 तेज सफेद एवं 4 दांतों वाले हाथी भी भिजवा दिए। भगवान तब इंद्र के घर गए और माता अदिति को उनके कुंडल प्रदान किए। वहां इंद्र तथा उसकी पत्नी ने कृष्ण तथा उनकी प्रिया सत्यभामा की पूजा की। फिर सत्यभामा के अनुरोध पर भगवान ने स्वर्गिक पारिजात वृक्ष उखाड़ लिया और उसे गरुड़ की पीठ पर रख दिया। इंद्र तथा अन्य सारे देवताओं को परास्त करने के बाद कृष्ण उस पारिजात को अपनी राजधानी ले आए। एक बार रूप दिए जाने पर पारिजात वृक्ष ने रानी सत्यभामा के महल के बाग को मनोहर बना दिया। इस वृक्ष की सुगंध तथा मधुर रस के लालची भौरे स्वर्ग से ही इसका पीछा करने लगे थे। भगवान अच्युत को नमस्कार करने, उनके पैरों को अपने मुकुट की नोकों से स्पर्श करने तथा अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान से याचना करने के बाद भी उस महान देवता ने अपना काम सधवाने के बाद भगवान से झगड़ना चाहा। देवताओं में कैसा अज्ञान समाया है, धिक्कार है उनके ऐश्वर्य को। तब उन अव्यय महापुरुष ने प्रत्येक दुल्हन वधू के लिए पृथक रूप धारण करते हुए एक साथ सारी राजकुमारियों से उनके अपने अपने भवनों में विवाह कर लिया। अचिंत्य कृत्य करने वाले भगवान निरंतर अपनी प्रत्येक रानी के महल में रहने लगे, जो अन्य किसी आवास की तुलना में अद्वितीय थे। वहां पर उन्होंने अपनी मनोहर पत्नियों के साथ रमण किया। यद्यपि वे अपने आप में पूर्ण तुष्ट रहते हैं और सामान्य पति की ही तरह अपने गृहस्थ कार्य संपन्न किए, इस तरह उन स्त्रियों ने लक्ष्मी पति को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। यद्यपि ब्रह्मा जैसे बड़े से बड़े देवता भी उन तक पहुंचने की विधि नहीं जानते, वे उनके प्रति निरंतर वृद्धिमान अनुराग का अनुभव करती, उनसे हंसी युक्त चितवन का आदान प्रदान करती और हास परिहास तथा स्त्रियोन्वित लज्जा से पूर्ण नित्य नवीन घनिष्ठता का आदान प्रदान करती। यद्यपि भगवान की प्रत्येक रानी के पास सैकड़ों दासियां थी, तो भी वे भगवान के पास विनय पूर्वक जाकर उन्हें आसन प्रदान करके उत्तम सामग्री से उनकी पूजा करके उनके पांवों का प्रक्षालन करके तथा मालिश करके उन्हें खाने के लिए पान देकर उन्हें पंखा झलकर उन्हें सुगंधित चंदन लेप से लेपित करके फूलों की माला से सजाकर उनके बाल संवार कर उनका बिस्तर ठीक करके उन्हें नहलाकर तथा उन्हें विविध उपहार देकर स्वयं उनकी सेवा करना पसंद करती। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत नरकासुर का वध नामक 59वें अध्याय के श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।